इन पांचों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह भी किस तरह से हुआ, अद्भुत बात है। महाराज द्रुपद अपनी राजधानी में पंजाब में, उसको पंचाल कहते थे, पंचाल वहां की थी इसलिए उसको पंचाली कहते। लेकिन आजकल जो पंच नद जो कहते हैं, वास्तव में वो बात नहीं, पंचाल शब्द ही है, उसी को पंजाब कहते हैं। पंचाल बहुत प्रसिद्ध शब्द है। पंचाल देश की थे द्रौपदी, पंजाब की थी, और वह बहुत गुणवती स्त्री थी। उसके साथ पाणी ग्रहण करने के लिए दुनिया के सारे राजकुमार उत्कंठित थे कि मेरी पत्नी बने, मेरी पत्नी बने। भारत में यह नियम था कि अगर इस प्रकार की कोई कन्या है तो उसके लिए कुछ न कुछ कंपटीशन रखा जाता था, शर्त रखी जाती थी। उस शर्त में जो क्षत्रिय या ब्राह्मण पास करता था तो उसके साथ उसका विवाह होता था। तो द्रुपद ने यह शर्त रखा था, उनके यहां एक धनुष रखा गया था और सीलिंग में नीचे जल था और जल में एक मछली घूम रही थी, बनावटी मछली घूम रही थी और उसका प्रतिबिंब सीलिंग में पड़ रहा था, शीशा लगाया गया होगा। उस शीशे को देख करके उसमें मछली के आंख में बाण मारना था। ऊपर केवल प्रतिबिंब घूम रहा है, उसको देख करके बाण मारना था जल में, जल में बाण मारना था आंख में, और बहुत तेज गति से मछली घूम रही थी, ऐसा कंपटीशन रखा गया। भगवान वेदव्यास देव ने कुंती से कहा कि तुम अपने पुत्रों को भी उस कंपटीशन में भेजो, प्रतियोगिता में। तो कुंती ने कहा कि भेद खुल जाएगा, हम लोग ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, वहां जाने पर कई लोग पहचान लेंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, उनको भेजो। तो लोग गए उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। भगवान कृष्ण भी आए थे, श्री बलराम जी आए थे, भारत के लगभग सभी राजाओं के लड़के आए थे वहां पर। उसमें कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग भाग लेने के लिए। तो वहां पर वर्णन है कि श्री बलराम जी से भगवान कृष्ण बात करते हैं कि भैया देखिए, वह व्यक्ति ठीक युधिष्ठिर जैसा लग रहा है ना। वो तो युधिष्ठिर ही थे, कोई दूसरा नहीं था। लेकिन भगवान कहते हैं, देखिए गोरे और पतले ऊंचे शरीर वाले युधिष्ठिर जैसे लग रहे हैं ना, वो भी तो भगवान ही है, वो भी वैसे ही नाटक कर रहे थे। बलराम जी कहते, हाँ लगता है युधिष्ठिर जैसा बिल्कुल। भगवान ये भी कहते, कहीं सचमुच युधिष्ठिर ही तो नहीं है। और वो जो मोटे शरीर वाले हैं वो भीमसेन जैसे लग रहे हैं, और वो भी पतले शरीर वाले अर्जुन जैसे लग रहे हैं, सांवले शरीर वाले, मेरे जैसा शरीर जिनका, वो अर्जुन जैसा लग रहा है, वो नकुल सहदेव जैसा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, जानते हैं कि वही पांचों आए हुए हैं। इसके बाद कंपटीशन में सब लोग भाग ले रहे थे, तो अधिकांश लोग तो धनुष पर तीर ही नहीं चढ़ा पाए। धनुष इतना भारी था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना यही कठिन था। उस पर तांत कितने लोग चढ़ाने की कोशिश किए तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ गिर गया, नहीं कर पाए। अंत में कर्ण उठा, कर्ण उठा तो द्रौपदी जान गई कि यह मत से भेद कर सकता है, लेकिन उसको विवाह करना नहीं था उससे। दूसरी बात ये थी कि कर्ण पहला व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में नग्न करने का प्रयास किया था। तो बाद की बात है, सुनिए मैं भूल रहा हूं। हाँ, तो वो कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कह दिया कि इस व्यक्ति के कुल खानदान का मुझे पता नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले सकता। इसी क्रोध में कर्ण ने सबसे पहले सभा में प्रस्ताव रखेगा कि इसको नग्न किया जाए, और किसी ने नहीं कहा। दुर्योधन ने नहीं कहा द्रौपदी को नग्न करने का, कर्ण ने कहा था। तो जब द्रौपदी ने कहा कि इसके कुल सील का मुझे पता नहीं है, यह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, वो मुंह नीचे करके और बैठ गया कर। इसके बाद अर्जुन उठे, जब अर्जुन जब उठे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे और तो जानते थे कि लक्ष्य भेद करेंगे। अर्जुन गए अपने गुरु महाराज द्रोणाचार्य को प्रणाम किए मन ही मन, और इसके बाद जल में देख करके शिवलिंग में जो मछली घूम रही थी, और जल में देखकर ऊपर शिवलिंग में मारना था, शरीर में घूम रहा, तो जल में देखे धनुष पर प्रत्यंचा तुरंत चढ़ा लिए, चढ़ा करके इसके बाद देखते देखते मारे और मछली के आंख में वो बाण लग गए। इसके बाद विवाह हुआ धूमधाम से, अनेक राजाओं ने विरोध किया लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम क्षत्रियों के रहते रहते एक ब्राह्मण के साथ कैसे विवाह हो सकता है, ये लोग लगे कौन। लेकिन बाद में हुआ कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है और महाराज पांडु के पुत्र है। कौन है? अर्जुन है। अर्जुन एक भेद खुल गया कि पांचों भाई यहाँ बैठे हैं, तब दुर्योधन आदि भी आकर के आलिंगन करने लगे, हाँ हाँ बड़े भाग्य से आप लोग बच गए, हमारा सौभाग्य था, ये था वो, सब हस्तिनापुर के लोग मिलने लगे। और द्रौपदी के साथ विवाह हुआ, इसके बाद पांचों भाई आए। लेकिन अब असत सभा आया, अब गुंडों की सभा लगी हस्तिनापुर में बदमाशों की, ये तो खल थे ही, दुष्ट थे, द्रौपदी के प्रति ये सब लुब्ध थे बहुत लोग। और अब कर्ण तो अपने अपमान का बदला चुकाना चाहता था, तो उनको जुआ के खेलने के लिए प्रेरित किए। किसने प्रेरित किए? कोई भी काम दुर्योधन को कराना होता था तो उस पर साइन कराता था धृतराष्ट्र से, उसका साइन चलेगा, स्टैंप लगेगा, क्योंकि वही राजा वास्तविक माने जाते थे। तो उसने दुर्योधन ने कहा कि पिताजी हम लोग राजा हैं, राजाओं को खेलना चाहिए, जुआ खेलना राजाओं का काम होता है, 10-20 लाख करोड़ का इधर उधर आना जाना ये एक आनंद की बात है, तो हम लोग राजा हैं तो राजा के साथ ही जुआ खेलेंगे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ये राजसूय यज्ञ कर चुके थे इंद्रप्रस्थ में, बहुत उनका जस बढ़ा हुआ था, तो जुआ खेलने के लिए धृतराष्ट्र आमंत्रण दिया। महाराज युधिष्ठिर का ऐसा स्वभाव था कि अपने से बड़ों की आज्ञा को टालते नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, जुआ चालू हुआ तो पहले से प्लान था, शकुनी सब जुआ में उनको हराता गया सब तरह से। तो कई प्रकार के धन रखे गए दाव पर, राज्य रखा गया यहां तक कि, लेकिन अंत में शकुनी ने कहा कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है, उस वस्तु को आप दाव पर रखिए, अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो आपका सारा धन लौटा दिया जाएगा, और नहीं हार जाएंगे तो हार जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर की मति ऐसी मारी गई, कहिए जुआड़ी का दिमाग खराब होता ही है, उसे लोग बना रहता है, ये दैव जैसे। महाराज युधिष्ठिर स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है, द्रौपदी को दाव पर रख दिया, और उनको तो हारना था, उस कपट द्यूत में शकुनी उनको हरा दिया। हराने का मतलब यह था कि द्रौपदी अब पांचों पांडवों की नहीं रही और दुर्योधन की हो गई, दुर्योधन चाहे जो भी करे। अब द्रौपदी जी विनय करती रही अपने पति से या भीष्म पितामह से सबसे, लेकिन सब कुछ नहीं बोल रहे थे। जब उनको लाया गया तब तो दुशासन पकड़ करके लाया, केस सभा में लाया, और कर्ण ने पहले कहा यह जुए में हारी हुई स्त्री है और 5-5 इसके पति हैं, इसलिए इसे सभा में नग्न करो। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा काम कैसे किया जाएगा, ये तो वेश्या है, ये तो वेश्या है, इसके 5 पति हैं और इसे नग्न करो, ये हम लोगों की संपत्ति है, तो हम इसे नग्न करें चाहे जैसे करें। आप समझ सकते हैं इतनी सत्ता जमी हुई थी सरकार की कि कोई चे बोलने वाला नहीं था। ये भारत की रानी को जो राजस्वी यज्ञ में भाग ली थी, जिसके केसों का संस्कार किया गया था, केस को खींच करके लाना और सभा में ला करके नग्न करना उसे, आज के युग में भी कोई व्यक्ति इसको नहीं सह सकेगा, उस समय की तो बात ही दूर है। फिर भी अब उन लोगों के भय से कोई कुछ नहीं बोलता था, संग्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान ने रक्षा किया, वस्त्र वर्धन किया, वस्त्र बढ़ाया, तो उसी की याद कर रही है कुंती महारानी। असत सभा या असत सभा से आपने रक्षा किया हमारी, हमारे पुत्र वधु की लाज बचाया, रक्षा किया है कि